नित्या सौम्यता से मुस्कुराई। इनाया के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभरे। नित्या की सिचुएशन उसे कुछ कुछ खुद से मिलती नजर आई। उसके आई बाबा भी तो बिना उसकी मर्जी के उसकी शादी एक गुंडे से करवाने जा रहे थे। नित्या तो भाग गई, लेकिन उसके पास तो मरने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। कायरव के पेरेंट्स तो अभी तक भी उस पर प्रेशर बना रहे थे कि उसे छोड़कर वो सिया से शादी कर ले। पता नहीं ये पेरेंट्स लोग खुद को समझते क्या हैं, जन्म देकर जैसे भगवान ही बनने लगते हैं, बिना ये जाने कि उनके बच्चे क्या चाहते, उनकी खुशी किस में है। उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेने लगते हैं, अपने डिसीजंस उन पर थोपने लगते हैं। जिसकी लाइफ का सवाल है उसी की एक नहीं सुनी जाती, बस ईश्वर बनकर अपनी सहूलियत और इच्छा के अनुसार फ़ैसला कर लेते हैं। चाहे उससे बच्चों की लाइफ बर्बाद होती है तो हो, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बस अपनी बात मनवाने से मतलब है, उनका फ़ायदा होना चाहिए, उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। दिल में बसा गुस्सा और नाराज़गी अल्फाजों में झलकने लगी, लेकिन ज़ुबान से एक शब्द बाहर नहीं आया। लब खामोश थे, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, जिसका रिफ्लेक्शन इस वक्त उसके चेहरे पर भी आ रहा था। इनाया यही सोच रही थी जब अचानक कायरव की आवाज़ कानों से टकराई और वो चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई। हड़बड़ाते हुए नज़रें कायरव की तरफ घुमाई, जो उसे ही देख रहा था। कुछ कहा तुमने? तुम ठीक हो? कायरव ने उसके गाल को अपनी हथेली से छूते हुए सौम्य स्वर में सवाल किया। उसकी आंखों में फिक्र और चेहरे पर चिंता देखकर इनाया ने धीरे से सर हिला दिया। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस आज माँ बाप का एक और सेल्फिश रूप देख लिया तो उसी बारे में सोच रही थी। मेरे डैड सेल्फिश नहीं हैं, नित्या ने एकदम से कहा और सबकी निगाहें उसकी तरफ घूम गईं। वो बच्चों जैसे मुंह फुलाते हुए बोली, मेरे डैड थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कभी कभी रूड हो जाते हैं, लेकिन वो सेल्फिश नहीं है। तेज तो उनके फ्रेंड का बेटा था और उनके सामने उसकी इमेज बहुत अच्छी थी, इसलिए तो उन्होंने मेरी शादी उससे फिक्स की थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर उन्हें पहले पता होता कि तेज इतना गंदा है तो वो कभी उसे मेरे लिए चूज़ नहीं करते। वो बस चाहते थे कि मैं खुश रहूं और उनके आसपास रहूं, इसलिए जब अंकल ने रिश्ते की बात तो उन्होंने हाँ बोल दिया। उन्हें विश्वास था कि उनके फ्रेंड के घर में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। नित्या अपने डैड की तरफदारी कर रही थी। उसका डर नाराज़गी अपनी जगह थी, लेकिन कोई और उसके डैड के लिए गलत बोले उसे बर्दाश्त नहीं था। मानव साहात बांधे खामोश खड़ा बस उसे गौर से देख रहा था। अच्छा, अगर वो इतना ही तुमसे प्यार करते थे, इतनी ही फिक्र थी उन्हें तुम्हारी, तो तुम्हारे मना करने के बाद भी तुम्हारी शादी उस कमीने तेज से क्यों करवा रहे थे? सीने पर हाथ बांधे इनाया भौहें से कोड़े उसे घूरने लगी। नित्या तपाक से बोली, वो तो जब भी डैड मुझे किसी लड़के से मिलने कहते, फोटो दिखाते थे, तो मैं हमेशा बहाना बनाकर मना कर देती थी कि मुझे शादी नहीं करनी। डैड को लगा इस बार भी मैं बहाना बना रही हूँ, इसलिए वो ज़िद पर अड़ गए थे। इनकी ये ज़िद तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती थी, इसका एहसास है तुम्हें? बहुत प्यार करते थे ना तुमसे, तो तुम्हें छोड़कर अपने फ्रेंड और उनके बेटे पर आंख बंद करके विश्वास क्यों कर लिया था? अपनी बेटी की लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले उन्होंने उस लड़के के बारे में एक बार ठीक से कुछ पता करवाना तक ज़रूरी नहीं समझा? ये कैसा प्यार था उनका? यहाँ नित्या को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो टुकुर टुकुर परेशान से उसे देखती रही। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी की इतनी जल्दी क्यों थी उन्हें? देखने में उतनी भी ज़्यादा एज तो नहीं लगती तुम्हारी। उन्हें लगता है कि मुझ में बहुत बचपना है, मैं अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरी इस इनोसेंस का फ़ायदा उठाकर कोई मुझे हर्ट ना कर दे। उन्हें मेरी फिक्र है, वो खुद हर वक्त मेरे साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करवाना चाहते हैं जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके और जिसके साथ मैं सेफ़ और खुश रहूं। वो अंकल और उनकी फैमिली को बहुत पहले से जानते हैं, उन्हें लगा कि मेरे लिए वो फैमिली ठीक रहेगी, वहाँ मुझे बहू नहीं बेटी बनाकर रखा जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अभी भी वो मिस्टर शेरगिल का ही साथ दे रहे थे, शायद वो पूरी तरह गलत भी नहीं थे और ये बात नित्या समझती थी। इस लम्हे में मानव को एहसास हुआ कि वो जितनी बचकानी हरकतें करती है उतना भी बचपना नहीं है उसमें, समझदार है और अपने डैड से बहुत प्यार करती है। इनाया शायद आगे कुछ कहती पर कायरव ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इनाया बस अब रहने दो, क्या पता नित्या सच बोल रही हो, उसके डैड के इंटेंशन गलत ना हो। इनाया का ध्यान अचानक ही नित्या से हटकर कायरव पर गया। कुछ बातें याद आईं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। नित्या पर से निगाहें हटाते हुए वो पलटी और सीने पर हाथ बांधे कायरव की तरफ घूम गई। बहुत से कोड़े तीखी निगाहों से उसे घूरते हुए बोली, तुमसे तो मैं पूछना ही भूल गई, जब मैं आई तब यहाँ क्या चल रहा था? कैसे जानते हो तुम इसे? जहाँ तक मुझे याद है मैं तो इससे आज पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। आई गेस जोधपुर ही था जहां मेरी नित्या से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, जो कि एक कोइंसिडेंस था। याद है तुम्हें जब हमारे हनीमून पर मानव तुमसे मिलने आया था और शाम को हम बाहर जाने वाले थे, तुम मानव के साथ आ रही थी और मैं पहले निकल गया था। तुमने मुझे एक लड़की के साथ देखा था और बाद में सवाल भी किया था। कायरव की बातें सुनकर इनाया का दिमाग उसी वक्त में चला गया और एक के बाद एक उसे सारी बातें याद आने लगी, साथ ही उसके एक्सप्रेशन भी बदलते जा रहे थे। वो नित्या ही थी। उस दिन वहां हम इत्तफाक से मिले और दूसरी मुलाकात आज हुई, तब मुझे पता चला कि नित्या मानव की फ्रेंड है। छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने सब सच सच बांध दिया। इनाया और मानव की नजर एक साथ एक दूसरे की तरफ घूम गई। दोनों ही हैरान थे। उन्होंने बारी बारी कायरव और नित्या को देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं, जो था दिल में ही रख लिया। वैसे ये कैफे ही है, बस अभी बनकर रेडी नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, आजकल में फिनिशिंग हो जाएगी, उसके बाद आगे का काम शुरू होगा। और जब ये कैफे बनकर तैयार होगा तब पूछूंगा मैं तुमसे कि तुम्हें कैफे कैसा लगा। तब तक के लिए इधर आओ, कुछ दिखाता हूँ तुम्हें, जिसे देखकर तुम्हें कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा कि रेडी होने के बाद ये कैसा दिखेगा। कायरव ने बात का रुख मोड़ा। उसे आते ही नित्या ने जो कहा था वो बात याद आ गई थी। उसने बुलाया तो नित्या जल्दी से उसके पास आ गई। कायरव ने अपने फोन में कुछ किया और कुछ इमेजेस नित्या को दिखाने लगा। कैफे का अलग अलग पार्ट बनने के बाद कैसा लगे ये उसे दिखाने और बताने लगा। नित्या बड़ी ही दिलचस्पी से उन पिक्चर्स को देख रही थी और धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। देखा तुमने, बनने के बाद ऐसा दिखेगा ये कैफे। इनफैक्ट ये तो बस एक आइडिया है, रियलिटी में इससे भी अच्छा दिखेगा। सच में? अगर यकीन ना हो तो खुद देख लेना, कायरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नित्या की आंखें एक्साइटमेंट से भर गईं। मानव और इनाया दोनों चुप से खड़े उन्हीं दोनों को देख रहे थे। कायरव को नित्या के साथ इतना बिजी देखकर इनाया खींच गई और उसे छोड़कर मानव के पास आ गई। मनु चल मुझे अपना कैफे दिखा, मुझे भी देखना है। नित्या एकदम से कायरव को छोड़कर मानव के पास आ गई और मानव के बाह को दोनों हाथों से पकड़कर हिलाने लगी। मानव मुझे भी तुम्हारा कैफे देखना है, तो मुझे दिखाओगे ना? नित्या टिमटिमाती आंखों से बड़ी ही उम्मीद से उसे देख रही थी। उसके अचानक ऐसा करने पर मानव के साथ साथ इनाया और कायरव भी चौंक गए। मानव कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही इनाया उसका हाथ छोड़ते हुए पीछे हट गई। इतने प्यार से बोल रही है, कैफे देखने ही यहाँ तक आई है, दिखा दे इसे कैफे, तू भी चलना साथ। मानव ने तुरंत नजरें इनाया की तरफ घुमाई।
नहीं, तू जा और अपनी स्पेशल फ्रेंड को अपना कैफे दिखा, मैं वैसे भी ऑलमोस्ट देख ही चुकी हूँ। स्पेशल फ्रेंड पर उसने खास जोर दिया था और बहुत ही गौर से नित्या को देख रही थी। मानव चाहता तो नहीं था, लेकिन कायरव ने भी जोर दिया तो उसे मानना ही पड़ा। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इस वक्त कोई और रास्ता भी नहीं था, तो मन मारकर वो रेडी हो गया। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ तुम्हें कैफे, जबकि अभी यहाँ दिखाने लायक कुछ है नहीं। मानव ने जबरदस्ती अपनी बांह पर से नित्या के हाथ को हटा दिया और जैसे ही आगे बढ़ा, नित्या ने झट से वापस से उसका हाथ पकड़ लिया। टू बी कंटिन्यूड।